अध्याय दो श्लोक संख्या 68 2.68
तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रोहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
इसको बड़े ध्यान से समझिए तात्पर्य को। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर, अर्थात सारी इंद्रियों को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाना ही कृष्ण भावनामृत है ना। पहले वाक्य में पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के द्वारा अथवा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। हाँ, जो बलवान है क्या है? इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, जो लालसा है, जो इच्छाएं है, वो कैसी है? बलवती है, बलवान है। ऐसी बलवान इच्छाओं को या उस शक्ति को दमित किया जा सकता है, अर्थात उसको परास्त किया जा सकता है। जैसे जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इससे क्या समझ में आया? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में यदि हम लगाएंगे, ये विषयों की ओर आकर्षित नहीं होंगे और इस प्रकार से उनके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसा घुमाइए, मेरे होगी फीडबैक हो रहा है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के प्रति प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? हिंदी थोड़ी सी दो चार बार पढ़ने से समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, अर्थात क्या कर लेता है, अपने हृदय में भर देता है, फुल हृदय को फुल कर देता है। क्या किस बात से फुल भर देता है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। इस बात को कि बुद्धि स्थिर करना है तो वह कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हो सकती है, इस बात को व्यक्ति क्या करता है, हृदय में ठूस ठूस के भर देता है। और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। अब कैसे हृदय में ये भरा जाए, हृदय में कैसे ठूस ठूस के भरा जा सकता है? कोई सिखाने वाला चाहिए ना, है कि नहीं? कोई सिखाने वाला चाहिए, और सिखाने वाला कौन चाहिए? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, प्रामाणिक गुरु। कैसे गुरु चाहिए? प्रामाणिक, स्वयं को भगवान बोलने वाले या स्वयं ही सेंस एंजॉयमेंट में पड़े हुए हैं, तो हमको क्या सिखाएंगे, सेंस एंजॉयमेंट सिखाएंगे। परंतु प्रभुपाद महाराज की कृपा से ऐसे गुरु भी है जो प्रामाणिक है, तो वो प्रामाणिक गुरु क्या करते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति जो है, वो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे ये कहा है, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से और उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कोई ये सोचे कि मैं भगवत गीता का बुक ले लेता हूँ, हाँ, और क्या है उसमें, सब तो लिखा है, और घर पे जाके पढ़ते बैठे तो सारा दिव्य ज्ञान समझ में आएगा? नहीं आएगा, किसी को नहीं आया है अभी तक। इवन जो भगवत गीता के महान प्रचारक है उनको भी नहीं है, उन्होंने भी अपने गुरु से सीखा। सभी अपने गुरु से सीखते हैं और फिर उस ज्ञान को देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिना प्रामाणिक गुरु के यह अभ्यास संभव नहीं है, इस बात पे विश्वास चाहिए। और वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यदि वो इस बात को समझ लेता है तो वह व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसका अधिकार, कौन सा अधिकार? मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत महत्व का श्लोक है, वैसे तो सारे महत्व के श्लोक है। इस श्लोक में ऐसा तो अर्थात इस श्लोक का सार क्या है, अभी हम जो तात्पर्य पढ़े हैं, तो इस श्लोक का एसेंस, सार, रस, तत्व, अमृत क्या है, उपदेश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है इस श्लोक की? हाँ, इंद्रियों को, हाँ, देखिए उसका अर्थ क्या होता है। अर्थ यह है कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो इसका सार क्या बताएं आप, ये पढ़ के हमको सार क्या हो सकता है इसका? प्रभु जी क्या एक वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर से पढ़िए अनुवाद चार लाइन का। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उस पुरुष के उस व्यक्ति के वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो सार क्या है एक वाक्य में तो बोल सकते, इतना सिंपल है, एक सेंटेंस में बोली एकदम, ये ऐसा का ऐसा मत बोली, बस सारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, बस हो गया। इस श्लोक का सार क्या है? इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। भगवान बहुत महत्व की बात बता रहे हैं, एसेंस ऑफ द श्लोक, सार है इस श्लोक का। मानव समाज की प्रगति उसके इंद्रिय नियंत्रण से नापी जा सकती है। मानव समाज कितना प्रगतिशील हो गया यदि ये जानना है, नापना है आपको। मान लो किसी ने एक मीटर पट्टी दिया और पूछा गया आपको, कहा गया कि भाई नापो मानव समाज ने कितनी प्रगति की है, कितनी प्रोग्रेस की है मनुष्य समाज ने, इसको नापो। तो किससे नापेंगे, कौन से वस्तु से नापेंगे, कैसे नापेंगे? मनुष्य समाज ने प्रगति की है मानते हैं? हाँ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। अच्छा तो मानते हैं तो कितना, जैसे 1 to 10, 10 point, 100 points है, 100 marks है, तो 100 marks में से कितना परसेंट प्रगति किया, कैसे मानेंगे, कैसे नापेंगे? हाँ 20% की है, कैसे नापा आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसको प्रगति नहीं कहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य समाज ने वास्तव में प्रगति की है यह यदि नापना है तो नापना चाहिए कैसे? इंद्रिय नियंत्रण मानव समाज ने कितना रखा है, ये मानव समाज अपने इंद्रियों पे कितना नियंत्रण रख सकता है या रखा हुआ है, कितने इंद्रिय इसके नियंत्रण में है, कितने हैं? तो माता जी बोली अभी कितना परसेंट प्रगति हुआ,
20,
फिर भी 20 जीरो परसेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी भी मनुष्य ने, मनुष्य प्राणी ने कितनी प्रगति की है, यदि मनुष्य मनुष्य काम वासना से इतना परेशान है, इतना परेशान है कि कुत्ते के जैसा रह रहा है। आप देखिए कोई बहुत ही अच्छी प्रगति की है और बड़े बड़े 5-star होटल्स और AC होटल्स और एकदम हाई क्लास सब कुछ निर्माण किया है, और उसमें जहां तहां पोस्टर्स और म्यूजिक और सब कुछ लगा हुआ है। अब म्यूजिक और पोस्टर क्या है, सारे भौतिकवाद, सारा एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, काम वासना को बढ़ाने वाले, और सारे लोग स्त्री पुरुष ऐसी जगह जब एकत्रित होते हैं तो कैसे देखते हैं एक तरफ, एक दूसरे की तरफ, कुत्ते के जैसे ही देखते हैं, सेम, देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट लाइक अ डॉग, जस्ट लाइक अ कुत्ता। और फिर कहते हैं प्रगति हुई है, बहुत प्रगति हुई है, क्योंकि क्या विकसित हुआ है, वासनाएं डेवलप हुई, इसलिए प्रगति हुई। और फिर इसका फल क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है? जो रिजल्ट हमको मिलता है, जो हम देख रहे हैं और फिर दुख प्रकट कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण यह कि जो प्रगति नहीं है उसको हम प्रगति मान रहे हैं, जो विकास नहीं है उसको हम विकास मान रहे हैं। देखिए, भगवद गीता का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है, भगवद गीता का सत्संग प्रत्येक 5-स्टार होटल में होना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, जो भी एंट्री करेगा पहले भगवद गीता का कोर्स करके आया है कि नहीं। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तभी तो ये सुधरेगा समाज, मानव समाज। क्योंकि वहां जाके होता क्या है, इंद्रिय तृप्ति को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है इसका हमको प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति मान लो विरक्त हो गया और अपना मित्र के साथ एकाध बार 5-स्टार होटल चला गया किसी कारणवश, तो उसको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, किसकी, इंद्रिय तृप्ति की। तो यहां भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि यदि हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती। अर्थात सबसे महत्व की बात है इंद्रियों का नियंत्रण, जो कि हम इतने विकसित होते जा रहे हैं, इतने विकसित होते जा रहे हैं, और ये विकास किसको कहते हैं, इंद्रिय अनियंत्रित होना उसको विकास कहते हैं। कोई व्यक्ति रात को 12 बजे खूब पी के आए अपने कार में और चलता रहता हो, अरे रात को 12 बजे गाड़ी चला रहे थे, लोग इतने प्रेम से और इतने उत्साह से और इतनी बड़ी बड़े ऊंचे भाव से बोलते हैं, हाँ वो एक हमारे मित्र डॉक्टर है। वो हमको एक दिन अचानक उनका फोन आया, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोले कि थोड़ी देर के लिए, उनको लगा हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो बोले नहीं चलो बस आधे घंटे के लिए आ जाना बस। कहाँ पे, तो कोई 7-स्टार होटल है किधर, बांद्रा में है किधर तो है, मैं नाम भूल गया अभी, वहां पे उन लोगों का मीटिंग था और उस मीटिंग में ड्रिंक कंपलसरी सब लोग लेते हैं, उन्होंने कंपलसरी किया, लेकिन इनको ये डर था कि रात को 11-12 बजेगा और ड्रिंक करने के बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा। इतना कंपल्शन, इतना जरूरी हो गया हमारे जीवन में ये सब इंद्रियों का आसक्त होना, इतना कंपल्सरी हो गया, हमारे इंद्रिय इतने आसक्त होने के लिए लालायित होते हैं इन सारे विषय वस्तुओं को, कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन और मृत्यु का धोखा है इसमें। मृत्यु हो सकती है, ये इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रखे तो मृत्यु हो सकती है, पर फिर भी उसको छोड़ते नहीं। विरक्ति कोई आसान चीज नहीं है, इसमें जो बताया गया है विरक्ति इतना आसान नहीं। उसी प्रकार से मांसाहार, हम कहते हैं बहुत विकास, बहुत डेवलप हो गए हैं, बड़ा मानव समाज ने प्रगति कर लिया है, और बड़े बड़े जगह पे बैठ के क्या खाते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, इनसे तो हिंस्त्र पशु अच्छे हैं। हिंस्त्र पशु क्या करते हैं, वो भी मांस खाते हैं, लेकिन वो अपना क्या, जरूरत की इतना अपना पेट भरने के लिए करते हैं। ये किस लिए करते हैं, मानव समाज हिंस्त्र पशु किस लिए करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं। मनुष्य समाज किस लिए करता है, इंद्रिय तृप्ति, एंजॉयमेंट के लिए। तो कौन ज्यादा प्रगतिशील है, वो हिंस्त्र पशु मनुष्य से ज्यादा प्रगतिशील है, क्योंकि इस चीज में वो सुख नहीं सोचता है, एंजॉयमेंट नहीं सोचता है इसको, और मनुष्य प्राणी इस चीज को एंजॉयमेंट सोचता है, सुख सोचता है, वेरी डेंजरस, नहीं बहुत डेंजरस है। और ऊपर से सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सोचते हैं कि हम बहुत डेवलप हो गए, बहुत प्रगति कर लिए। पहले के जमाने में टांगे होते थे, बैलगाड़ी होती थी, और बैल या घोड़े वगैरह होते थे, क्या करते थे, गोबर देते थे, और गोबर खेत में डालते थे और उससे फसल अच्छी आती थी। अभी गाड़ियां आ गई, अभी कार क्या देती है, गाड़ियां क्या देती है, धुआं देती है, उससे क्या होता है, कितनी बीमारी होती है, अनेक टाइप की बीमारियां होती है। लेकिन प्रगति कर ली है ना, बहुत प्रगति हो गई, बहुत डेवलपमेंट हो गई। किसी भी वस्तु विषय की डेवलपमेंट हुई है, मनुष्य की विशेषकर विकास हो गया है, प्रगति हुई है, तभी कहा जा सकता है जब वो अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करे। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना ही प्रगति है। कोई एक्स वाई जेड व्यक्ति वो प्रगतिशील है, बहुत डेवलप्ड है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आचरण में क्या देखेंगे। कोई व्यक्ति बहुत डेवलप, बहुत प्रगति कर लिया, कैसे पता चलेगा, हाँ? वो कितने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा हुआ है उससे पता चलेगा, अपने आप को कितना कंट्रोल रखा है उसने, हाँ? कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी खाता है क्या, कभी देखा है क्या गाड़ी पे खाते हुए उसको, नहीं देखा। कभी देखा है क्या होटलों में खाते हुए, नहीं देखा। कभी देखा है मांसाहार करते हुए, कुछ नहीं देखा है। अर्थात इसका इंद्रियों पे नियंत्रण है, इसलिए ये व्यक्ति प्रगतिशील है। वास्तव में इस व्यक्ति ने जीवन में प्रगति की, अन्यथा बाकी तो सब जानवर के जैसा ही है। चाहे कितना भी धन आए, कुछ भी हो जाए, यदि बिहेवियर, यदि आचरण नहीं बदलता है, इंद्रियों के ऊपर यदि नियंत्रण नहीं है, तो वो तो जानवर है, कहां की प्रगति करनी है, कैसे प्रगति करनी है। तो इसलिए इस श्लोक का इसेंस, सार ये है कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। इस बात को बहुत ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा था कंट्रोल, क्या कहा था, कंट्रोल। भगवान इसमें वही कह रहे कंट्रोल, दूसरा महामंत्र कंट्रोल। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, यदि कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और कंट्रोल करते हैं तो मान लो नियंत्रण करना सीख गए तो क्या होगा, उससे बुद्धि, मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होने से बुद्धि स्थिर होगी, और सारा संसार बुद्धिमान बनना चाहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं, उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती है, विचरण करती है ना, वो इंद्रियां एक एक विषय लेके उसी में फंसी रहती है, और उन इंद्रियों में से जिस इंद्रियों के साथ मन लगा है वही इंद्रियां उसके बुद्धि का अपहरण कर लेती है। वो इंद्रियां क्या करती है, बुद्धि को किडनैप कर लेती है, क्योंकि पहले क्या करती है, माइंड को फंसा देती है, मन को फंसा देती है, मन फंस गया कि बुद्धि को किडनैप कर देती है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस जो व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण से प्रेम करता है, उसका क्या है, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित किए हुए रहता है। कैसे, उसके इंद्रिय उसके मन को नहीं खींचते हैं, उसका मन उसके इंद्रियों को खींचता है। समझे ना, उसके इंद्रिया उसके मन को नहीं खींचते हैं, उसका मन उसके इंद्रियों को खींचता है। जैसे मान लो रथ है, भगवद गीता का आपने ये देखा है ना, इसमें पांच घोड़े हैं, इस रथ को पांच घोड़े लगे हुए हैं, और पांच घोड़े पंच इंद्रिय है। पांच घोड़े क्या बताते हैं, हमारे पांच इंद्रियों को बताते हैं, और ये जो लगाम है, ये लगाम मन है, मन क्या है, मन। यदि ये लगाम पक्का है, खींचता है घोड़ों को, यदि ये लगाम घोड़ों को नियंत्रित रखता है तो घोड़े बराबर हम जहां चाहे वहां हमको ले जाए, है कि नहीं। और मान लो उल्टा हो जाए, लगाम इतना ढीला है, इतना ढीला है लगाम कि घोड़े जहां चाहे वहां जा सकते हैं और लगाम का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाम का कोई फर्क उनके ऊपर नहीं होगा। तो क्या होगा? बुद्धि सारथी के रूप में बुद्धि बैठी है, लेकिन लगाम इतना लूज है तो बुद्धि क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? इंद्रिय अनियंत्रित हो जाएंगे, जहां चाहे वहां भागेंगे, जो अच्छा दिखा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। संसार में तो सभी अच्छा दिखता है, सारे इंद्रिय सारे सांसारिक वस्तु की ओर दौड़ेंगे और नित्य दौड़ते रहेंगे, मन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अब ये जो घोड़े हैं बिना लगाम के ये एक बार भागने लग जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ अच्छी हरियाली दिख रही उधर कहां पे, खाई में, वैली दरी खाई है, खाई समझते ना, वो खाई में उन घोड़ों को बहुत अच्छी हरियाली घास दिखा है खाने के लिए। अब वो क्या करेंगे? हाँ, खाने के लिए तो अच्छा दिख रहा है, भागो, अच्छा सुंदर है और कहां उतरेंगे? खाई में। रथ क्या हो जाएगा? पलटी हो जाएगा। ऐसे ये जो हमारे इंद्रिय है, यदि इनके ऊपर उसका लगाम नहीं रहेगा तो संसार की सारी बातें अच्छी लगती है, ये अल्कोहल, ये दारू, ये मांसाहार, ये सारी बातें, सारा ग्लैमरस वर्ल्ड है, ये सारी बातें अट्रैक्टिव है, खींचती है हमको, परंतु वो कहां पे है? खाई में है। एक बार खींच लेगी और हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा रथ टूट जाएगा, शरीर रूपी रथ टूट जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस मन जो है वो इंद्रियों को प्रभावित करता है, इंद्रियों से स्वयं प्रभावित नहीं होता है। वो क्या करता है? इंद्रियों को प्रभावित करता है, मन अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। उसका जो लगाम है वो लगाम टाइट पकड़ा हुआ है, जरा भी कुछ गड़बड़ होता है खींचता है। लगाम अर्थात मन का इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण कंट्रोल है। तो ये रथ हमको चलाना है, दी है, और हमारे उद्देश्य गंतव्य पे हमको पहुंचना है तो क्या करना होगा? मन का नियंत्रण इंद्रियों पे होना करना होगा, उल्टा नहीं होना चाहिए। और जो भक्ति में जब एक बार व्यक्ति आ जाता है तो उसका मन इस प्रकार से आकर्षित नहीं होता है, उसका मन आकर्षित हो चुका होता है ऑलरेडी कृष्ण की ओर, कृष्ण प्रेम की ओर। तो वो इस स्थिति में रहते हुए भी कंट्रोल के साथ चलता है। उसका रथ इस संसार में ही उसका रथ है, इस संसार में ही उसका रथ विचरण करता है, चलता है, परंतु कैसे? रथ है संसार में ही चलेगा ना, और संसार में चलते हुए सब कुछ दिखेगा, सारा संसार संपर्क में आएगा, सारे प्रलोभन, सारी खाई दिखेगी, बड़ी बड़ी खाई दिखेगी और उसमें सारा हरा हरा घास दिखेगा। परंतु क्या होगा? वो घोड़े जो है नियंत्रण में रहेंगे, वो एक इशारा मिलेगा उनको, नहीं हरा हरा दिख रहा है लेकिन क्या है? खाई है, रथ पलटी मार देगा, नहीं जाना है यहां पे। ये फर्क होता है कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति में और जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है उस व्यक्ति, उसकी उसका मन, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति का मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रित है। इसलिए नित्य कॉन्शियस रहना चाहिए, किसके? कृष्ण के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक में कहा गया तस्मादस्य महाबाहो, तस्मात् अस्य, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, या कहते हैं अतः, हम ये शब्द का प्रयोग कब करते हैं? इसलिए सब कुछ बताते हैं, फिर बोलते हैं इसलिए। अब वो इसलिए के आगे क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। पूरी बातों का जो ब्ला 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 ब्ला, इसलिए इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो भगवान यहां पे पहला ही शब्द तस्मादस्य, इसलिए। इसलिए क्या? इसलिए निष्कर्ष यह है। क्या निष्कर्ष है? किसकी बुद्धि स्थिर रहती है? किसकी बुद्धि स्थिर रहती है? जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है। ये क्या है? निष्कर्ष। भगवान क्या बोल रहे? तस्मात्, इसलिए। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है जो कृष्ण भावना। ये क्या है? निष्कर्ष। और हमको भी अपनी बुद्धि स्थिर यदि करना है तो क्या करना होगा? कृष्ण भावना भावित होना। उसके सिवा बुद्धि स्थिर नहीं होगी, चाहे अथक प्रयास कीजिए, कुछ भी कीजिए। बाकी सारी सिस्टम जो है वो सिस्टम आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। मान लो योग साधना, प्राणायाम, आसन, ये सब जो है ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, परंतु फिर हमारा मीटर गड़बड़ कर देता है। इसने हमको मदद किया, फिर हमारा रथ तो रोज निकलता है घूमने के लिए। सुबह 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 से रात तक हमारा रथ संसार के संपर्क में घूमते रहते, विचरण करते रहता है। सुबह सुबह जाके बहुत अच्छा प्राणायाम किया, आसन किए, योगा किया, सब किया, और फिर अपने ड्यूटी पे जा रहे, फिर रथ निकला संसार में। रथ निकला, अनेक प्रकार के घोड़ों को प्रलोभन दिख गए, फिर रथ नीचे गड़बड़ करने की चांसेस है, खाई में गिर सकता है। हाँ, यह बातें हमको हेल्पफुल है, लेकिन पूरा पूर्ण सॉल्यूशन, पूर्ण उत्तर किसमें है? कृष्ण भावना भावित होने में। ये निष्कर्ष है। कृष्ण भावना भावित हो गए तो बुद्धि स्थिर हो, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा शब्द इसमें है महाबाहु। महाबाहु का अर्थ क्या होता है? जिसकी भुजाओं में महान बल है। किसकी भुजाओं में महान बल है? यहां महाबाहु किसके लिए बताया, शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है? महाबाहु कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। महाबाहु तस्मादस्य महाबाहु, जिसकी भुजाओं में महान बल है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम अपनी भुजाओं से अनेक शत्रुओं को एक समय मारते हो, अनेकों शत्रुओं को एक साथ परास्त करते हो अपनी भुजाओं से, उसी प्रकार जो व्यक्ति एक साथ अपनी पांचों इंद्रियों को परास्त करता है एक साथ, वो व्यक्ति कौन कहलाता है? महाबाहु, जैसा महामनो कह सकते हैं। परंतु यहां पे भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति महाबाहु के जैसा, अर्जुन महाबाहु है, एक साथ अनेक शत्रुओं को ध्वस्त कर देते हैं, वैसे जो व्यक्ति एक ही समय एक ही साथ अपने पांचों इंद्रियों को परास्त कर सकता है, वो व्यक्ति महाबाहु जैसा है, उसकी बुद्धि सुरक्षित है। उसकी बुद्धि सुरक्षित है, नहीं तो बुद्धि को बहुत सारे खतरे हैं। असुरक्षितता है। परंतु जो व्यक्ति अर्जुन के जैसा महाबाहु है, वो व्यक्ति एक ही साथ अपने पांचों इंद्रियों के डिमांड्स जो है पांचवी इंद्रिय डिमांड करते रहती है ना, है कि नहीं? कंटिन्यूस डिमांडिंग ऑल द टाइम, पूर्ण समय, पूरा टाइम उन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने में ही जाता है। तो अपना पूरा समय उन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने से होता क्या है, डिमांड्स कम होती है क्या? बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। जैसे आग में तेल डाल रहे हैं, आग में तेल डालने जैसी है बात। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में पराक्रमी है, महाबाहु है, वो क्या करता है, एक ही समय अपने इंद्रियों के साथ युद्ध करता है, अर्थात उनको परास्त करता है। परास्त करता है अर्थात क्या करता है, उनकी जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को, केवल उन डिमांड्स को ही संतुष्ट करने में नहीं लगा, भगवान को संतुष्ट करने में लगा। तो अर्जुन को महाबाहो कहने का अर्थ यह दूसरा भी है कि तुम तो इतने महाबाहो हो, उनको स्मरण करवा रहे हैं भगवान, तुम तो महाबाहो हो, तुम तो एक साथ अनेकों शत्रुओं को परास्त कर सकते हो, अपने इंद्रियों को भी परास्त कर सकते हो, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? किसी व्यक्ति को उसका शक्ति का स्मरण करवाए, हनुमान जी को भी करवाना पड़ा था, जामोहन जी ने बताया कि तुम्हारे पास शक्ति है। बहुत बार हमको अपने विषय में पता नहीं रहता है, ज्यादातर हमको अपने विषय में पता नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जीवन भर प्रयास रहता है दूसरों के विषय में जानना। जीवन भर क्या करते हैं, दूसरों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, वो कैसा, पड़ोसी कैसा, भाई कैसा, ये कैसा, वो कैसा, कलिक कैसा, सब पूरा जीवन दूसरों के विषय में जानने में बीत जाता है, स्वयं के विषय में बहुत कम जानकारी हमारे पास है। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरे बुद्धि की स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इन सब बातों में हमको ज्यादा रुचि नहीं रहती, बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। और ज्यादा इंटरेस्ट वो क्या करता है, वो कौन है, वो कहां से आया है, आगे कहां जाएगा, दूसरे के विषय। इसलिए हमको अपने शक्ति का ज्ञान नहीं होता है, और जब अपने शक्ति का ज्ञान नहीं होता है तो हम इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन को यही प्रॉब्लम हुई है, अपनी ही शक्ति को नहीं जान रहे, इसलिए बार बार, कई बार भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे नामों का उच्चारण कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अर्जुन को वो स्मरण करवा रहा है, कह रहे महाबाहो, तुम तो महाबाहो। तो इस प्रकार से अर्जुन की महाबाहो दशा, महाबाहो रूप महाभारत में है। महाभारत में विराट युद्ध आप जानते होंगे, विराट राजा पे जब आक्रमण कर दिया गया था, किसने किया था आक्रमण, कौरवों ने आक्रमण किया, सारे कौरव, उसमें कौन थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सारा रथी महारथी सब, उन्होंने विराट राज्य पे, विराट राजा विराट के राज्य पे आक्रमण किया। और उस समय पांडव वहीं पे रह रहे थे, विराट राजा का आश्रय ले रहे थे, लेकिन उनके अज्ञातवास का वो अंतिम दिन था, ये लोग भूल गए थे, कौरव लोग भूल गए थे, उनको पता भी नहीं था। पर जब युद्ध का समय आया, उनको लगा विराट राज्य को आराम से आसानी से जीत लेंगे, और उन्हें भयंकर युद्ध किया। परंतु वही दिन था सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय होते से 13 साल पूर्ण हो गए थे, और अर्जुन अकेले उस राज्य का रक्षण करने के लिए, वो गोरक्षण के लिए निकला था, और सामने देखा तो इतनी बड़ी सेना, उसको भी पता नहीं था कि ये सेना युद्ध करने के लिए आ रही, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन अकेले कौरव सेना के, पूरी सेना के साथ युद्ध किया अकेले अर्जुन, सोच सकते हैं। और ऐसे बाणों का वर्षाव किया सबसे पहले तो उन्होंने भीष्म के ऊपर आक्रमण किया अर्जुन, ऐसे सुनहरे बाण छोड़े। पहला बाण छोड़ा तो भीष्म पितामह का ध्वज उखाड़ के फेंक दिया, ध्वज गिर गया। और फिर युद्ध ऐसे सुपर स्पीड, सुपर सोनिक स्पीड, वायु की गति से उन्होंने बाण छोड़े और भीष्म पितामह को मूर्छित कर दिया। मूर्छित हो गए, ऐसे मूर्छित हुए उनका सारथी उनको साइड में ले गए, युद्ध के बाहर, युद्ध स्थल के बाहर। इस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया। दुशासन सामने आया, दुशासन को तो वो बाण देखने का भी समय नहीं मिला कि अर्जुन बाण छोड़ रहे हैं। पांच बाण एक साथ, पांच बाण दुशासन को लगे, तुरंत युद्ध से भाग निकला, रुका ही नहीं। दुशासन हो गया, भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य के साथ भी युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य को भी भीष्म के जैसा उन्होंने मूर्छित करके भगा दिया। ऐसे भयंकर सारे 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 जितने भी कौरव थे, विकर्ण था, विकर्ण को भी बाण लग गया, विकर्ण भी भाग गया। अब उसके पश्चात सारे के सारे महारथी जो बचे थे एकत्रित अर्जुन के साथ युद्ध कर, सारे के सारे। और इतना घमासान युद्ध होने लगा और अर्जुन ने इतने वायु के वेग से बाण छोड़े कि वो बाण का पूरा, वो बाणों ने उनका पूरा, बाणों से आच्छादित हो गया, पूरा युद्ध भूमि बाणों से आच्छादित हो गया, कवर, पूरा बाणों का कवर, उस कौरव सेना को कवर पहना दिया बाणों का। इतना भयंकर सुपर स्पीड से अर्जुन ने बाणों का वर्षाव किया और फिर अंततः उन्होंने अपने केवल धनुष का टंकार किया, केवल धनुष का टंकार। उनके धनुष के टंकार का आवाज जो ध्वनि था वो वज्र का, जो वज्रपात होता है ना, जब इंद्र अपना वज्र छोड़ते हैं और पूरा भयंकर उसका ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उससे भी कई गुना ज्यादा वो टंकार का ध्वनि था, जिसके कारण वो कौरव की सेना ऐसे ही भाग गई। जो घोड़े पे बैठे थे घोड़े से कूद गए नीचे, जो हाथी पे बैठे थे वो हाथी से नीचे कूद के भागने लगे, हाथी और घोड़ों को वैसे ही छोड़ दिया। वो ऐसे बाण चलाते जैसे वो ताल वृक्ष होता है, बड़ा ऊंचा होता है, लंबा होता है। वो ताल वृक्ष का फल देखा है कभी आपने? नीचे से पत्थर मारो तो फल गिर जाए, और फल, वो फल जब नीचे गिरता है तो कैसे आवाज आता है, ठप ठप। वो अर्जुन के बाण ऐसे चल रहे थे और ऐसे गर्दन काट रहे थे सैनिकों के, मानो कोई ताल वृक्ष का फल ठप 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 गिर रहा हो नीचे, फटाफट फटाफट आवाज हो रहा था वैसे फल गिरने। और जो शत्रु सेना थी उनकी सेना, सैनिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा गर्दन टूट के नीचे जा रहा है, अभी मेरा गर्दन टूट, वो इतना सोच भी नहीं सकते थे, पता भी नहीं चलता था। एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर वो इतना स्पीड। दुर्योधन जब ये सब कुछ देखा तो इतना घबरा गया, उसको भी बाण चला दिया, लेकिन दुर्योधन कैसे जैसे तैसे बचा और बच के भागने निकला, तो उन्होंने पीछे से अस्त्र छोड़ा, वो अस्त्र से दुर्योधन को रक्त की उल्टी होने लगी और वो घबरा गया और वो भी अपना स्थान छोड़ के भागने लगा। इतनी भयंकर भयानक वार युद्ध अर्जुन ने कौरवों के साथ किया, सोच सकते हैं महाबाहु। परंतु उस समय अर्जुन के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं, ये नहीं लगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये और इस समय हुआ। बता सकते ऐसा क्यों हो गया होगा? उस समय तो कृष्ण भी उनके साथ नहीं थे, इस समय कृष्ण उनके साथ थे, ये प्रश्न आ सकता है मन में। हाँ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्व की बात है। उस समय अर्जुन को धर्म क्या कहता है, धर्म के अनुसार उनकी क्या जिम्मेदारी, क्या कर्तव्य है, इस बात के ऊपर पूरी श्रद्धा थी, पूरे कन्विंस थे इस बात से। कौन सी बात से? कर्तव्य, धर्म के अनुसार कर्तव्य, क्योंकि उनको विराट राजा को बचाना था, क्योंकि राजा विराट ने उनको आश्रय दिया। और यहां पे उनको क्या लग रहा है, अभी थोड़ी ना किसको, वो तो स्वयं के लिए युद्ध लड़ रहे, ऐसे उनको लग रहा है। परंतु यहां पे यह एक गलती उनसे यह हो रही थी कि वो धर्म शास्त्र को नहीं मान रहे, धर्म शास्त्र के आगे वो नीति शास्त्र को समझ रहे थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरे सगे है, भले ही आतंकवादी क्यों ना हो, मेरे अपने हैं, उनको बचाओ। आजकल ऐसे ही है, मेरा अपना है, आतंकवादी भी तो उसको बहुत सारे पार्टियां, पॉलिटिशियन सब बचाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो ये बहुत भयंकर नीति है, धर्म के विरुद्ध नीति है, वो लोग धर्म नहीं जानते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे ही जब जयद्रथ के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, कि यदि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का शिरच्छेद नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी। कौरव तो बड़े प्रसन्न हो गए इस प्रतिज्ञा से, उनको तो मारना नहीं था, बचाना था जयद्रथ को किधर भी छुपा के, और वो भी केवल शाम तक। सूर्यास्त होने तक उनको केवल जयद्रथ को छिपाना था, कहीं को छुपाना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी सेना, सारी सेना लगभग सारे रथी महारथी केवल जयद्रथ को बचाने के लिए आ गए, उसको छुपाओ जैसे तैसे बचाओ, केवल शाम तक अर्जुन के साथ युद्ध करते रहो, और बस आज का अंतिम दिन युद्ध का, सूर्यास्त जैसे ही हो जाएगा अर्जुन स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उस समय अर्जुन ने जो भयंकर अपने महाबाहो होने का जो सिद्ध किया कि अर्जुन वास्तव में कितने महाबाहो हैं, भयंकर युद्ध किया उन्होंने, भयंकर युद्ध किया। जब वो दिन भर जब वो युद्ध होता रहा तो ऐसे रथी और महारथियों को भी ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे दोपहर के समय सूर्य की ओर देखो क्या हो जाता है, आग अंधी हो जाती है, अंधी हो जाती है अर्थात थोड़े समय के लिए एकदम से वो अर्जुन का वो जो क्रूर रूप अर्थात क्रोधपूर्ण रूप, वो क्रोध को देख के और उनके बाणों की वर्षाओं से वो मानो सूर्य के जैसा सारे सैनिकों को दिख रहे थे अर्जुन कि ये। और जब जो कोई भी उनके तरफ सैनिक देखे अर्जुन की तरफ, अर्जुन की ओर, उनकी आंख के सामने जैसा सूर्य को देखने से होता है वैसे होता था, ऐसे ही टपक जाते टपाटप टपाटप, फल के जैसे उनके गर्दन नीचे टपकती जाती, इतना भयंकर, इतना बाणों का वर्षाव अर्जुन इतने स्पीड से करते, इतने महाबाहु। अंततः कथा हम सब जानते हैं कि वो कहां छिप गया था, एक पेड़ में छुप गया था या कहीं उसको छिपा दिया था जयद्रथ को। और वो फिर कृष्ण है जिसके साथ, कृष्ण है राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई नहीं बचा सकता, और कृष्ण यदि बचाना चाहते हैं कोई नहीं मार सकता। और कृष्ण कैसे है, नटखट है कि नहीं, नटखट है। वो क्या कहते हैं, अपनी दया का प्रदर्शन नटखट होके भी करते हैं कभी कभी दयालु है बहुत, लेकिन कैसे स्वभाव से चोर है, सब कुछ है, नटखट है, खड़े भी नहीं रहते ठीक से, हर काम टेढ़ा है, कोई भी काम कायदे से नहीं होगा। तो इस प्रकार से चीटिंग करके उसको छिपा दिया था। वास्तव में नियम है कि एक बार आप युद्ध के मैदान में आ गए हैं, युद्ध करके ही वापस जाओ, छिपो मत ऐसे। यदि कुछ लगा नहीं है, जख्मी नहीं हुए हैं, तो आपको युद्ध ही करना चाहिए। और उसको ऐसे ही भगा लिए और कहीं छिपा दिए, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, आप तो हमने छिपा दिया, इसको कौन मार सकता। परंतु कृष्ण जिसके साथ है वहां सब संभव है, सब कुछ संभव है। किसी भी प्रकार की जादू हमारे जीवन में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारी असंभव बातें हमारे साथ संभव हो सकती है, यदि हमारे साथ नाम रूप में कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण का नाम, इसमें कोई अंतर नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कृष्ण ने क्या किया? सूर्य को ढक दिया, अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया। अब दुर्योधन को लगा अभी तो सूर्यास्त हो गया, जोर जोर से कहने लगा जय द्रथ, आ जाओ बाहर। अभी अर्जुन के लिए हम एक चिता बनाएंगे, आओ बाहर। और जैसे ही जय द्रथ बाहर आया, भगवान ने क्या किया? अपने चक्र को वापस बुला लिया। और जैसे ही जय द्रथ और दुर्योधन वगैरह देखने लगे, अभी तो सूर्य है, तो उनको सोचने का भी समय नहीं मिला, बाण वो धनुष उठा के, अपना बाण उठा के धनुष पे लगाने का भी समय नहीं मिला। अर्जुन ने क्या किया? तुरंत उसका सिर छेद के जय द्रथ। तो ये महाबाहु अर्जुन है, परंतु भगवान जैसे कह रहे हैं कि महाबाहो हो, समझो अपने आप को, अपनी शक्ति को। महाबाहो ही होने से काम नहीं चलेगा, मन बड़े बड़े महाबाहो को भी धोखा देता है। ऐसा नहीं कि हम सुबह शाम जिम में जाते हैं और बहुत बढ़िया हमने सेहत बना ली है, या बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, शरीर को मजबूत रखते, सब अच्छा, फिर भी मन धोखा दे सकता है। महाबाहो हो सकते हैं हम, परंतु फिर भी मन हमारे साथ चीटिंग कर सकता है, हमको हमारी शक्ति को क्षीण कर सकता है, हमको दुर्बल बना सकता है। परंतु यदि हमने कृष्ण का सहारा लिया, जैसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, क्योंकि उनका मन इंद्रियों के चक्र में नहीं आता है, इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं आता है, बल्कि उनका मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उनका लगाम पक्का है। इसलिए अर्जुन महाबाहो है, उसको स्मरण दिलवा रहे भगवान महाबाहो के विशिष्ट। फिर तीसरा शब्द है निगृहितानि, निगृहितानि अर्थात विरक्त इंद्रिया, विषयों की विरक्ति, निग्रह जिसको हम कह सकते हैं, विषयों की विरक्ति। इंद्रिया जो है विषयों से ज्यादा, विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अरे चलो क्रिकेट की मैच है, बढ़िया देखेंगे देखेंगे। अरे क्या देखेंगे, 6 घंटा जाएगा, ऐसा लगता है। विरक्ति है, क्योंकि ये विरक्ति क्यों आई है, क्यों ये सब जो बेकार की बातें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात में इंटरेस्ट आ गया। हायर टेस्ट, हायर टेस्ट। यदि किसी ने हमको रसगुल्ला दिया खाने को, तो हम वो 1 रुपए की शुगर कैंडी खाएंगे? अभी हमको किसी ने 10-12 रसगुल्ले दे दिए, बहुत खा गए वाह, और अब कोई बोला नहीं नहीं बहुत अच्छे, शुगर कैंडी खाओ, शक्कर की गोली खाओ, खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? रसगुल्ले का टेस्ट मिल गया ना अभी मन को, अभी शुगर कैंडी नहीं चाहिए, शक्कर की गोली नहीं चाहिए। इंद्रियों का निग्रह, विषयों से निग्रह तभी होगा, विषयों को हम दूर तभी छोड़ेंगे जब हम बहुत ही उच्च दिव्य विषय को पकड़ लेंगे। उच्च विषय, दिव्य विषय के संपर्क में हम यदि आएंगे तो गौण विषय अपने आप निरुक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, निग्रह अपने आप हो जाएगा। इसलिए डिटैच होने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको सब कुछ छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, हमको पकड़ने की आवश्यकता है। छूट तो अपने आप जाएगा। रसगुल्ला खाने से अपने आप कैंडी हम नहीं खाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन ऊंचा टेस्ट मिल गया तो इसे निगृहितानि अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना में क्या होता है कि हमको इंद्रियों के ऊपर बलपूर्वक निग्रह करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको कोई बोलता है, किसी के यहाँ गए गांव में, कोई हमारे रिश्तेदार है, बहुत सालों से जानते हैं, गए हमको बहुत बुरा लगता है, क्या आप चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, अभी हमने सोचा आपके लिए पोहे बनाएंगे, अब वो भी बिना कांदे के कैसा लगेगा आपको, हमको बहुत दया आ रही है आपके ऊपर, हमको बहुत दया आ रही है, क्या करें, ऐसा बोलते हैं। परंतु हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया है हमारे इंद्रियों को, हमने अपनी जीवा को जबरदस्ती नहीं करके रखा, हे जीवा तुमको अच्छा लग रहा है कांदा पोहा, मत खा, मत खाने तो बहुत पिटूंगा, चटके दूंगा, ऐसे नहीं किया है। हमने अपनी ओर से कोई बल प्रयोग नहीं किया इंद्रियों, हमने केवल रसगुल्ला खा लिया, अभी हमारे इंद्रिय, हमारे जीवा स्वयं बोलती है ये सब नहीं चाहिए, हमने कोई बल प्रयोग नहीं किया। प्रभुपाद महाराज भी इसका बहुत बार ये उदाहरण देते हैं और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने भी यह उदाहरण बहुत सुंदर तरीके से बताया है। कोई व्यक्ति को पी लिया हो गया तो, पी लिया हो गया तो उसको क्या कहते हैं, मिश्री खाओ, परंतु वो बेचारा बोलता है तो कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी लगती है, कोई जॉइंटिस पेशेंट हो, पीलिया का पेशेंट हो तो मीठा, मीठी जो होती है ना मिश्री, वो कड़वी लगती है, परंतु क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ना इसलिए वो बोलता है ठीक है खा लेता हूं, और वो फिर वो खा लेता है, दिन में 4 बार 10 बार 20 बार, शुरुआत को कड़वा कड़वा लगता है, फिर बाद में क्या होता है उसको पता चलने लगता है, अरे ये खाने से मेरा पीलिया कम होते जा रहा है और अभी तो मुझे मिश्री की बहुत ही अच्छी टेस्ट आ रही है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रही है। शुरुआती शुरुआती जब हम कहते हैं कि प्रभु जी प्रसाद लीजिए, भगवान का ही प्रसाद ही लीजिए, केवल प्याज लहसुन मत खाइए, प्रसाद लीजिए, रसगुल्ला ही खाइए, शुरुआती शुरुआती लगता है नहीं 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 हमको तो बड़े मसालों की आदत है, हमको प्याज लहसुन की बहुत आदत है, कैसे ही? हम तो सोच भी नहीं सकते बिना प्याज लहसुन का कुछ बनता है, तो ये लो भगवान ने 70 रुपया किलो कर दिया उसको भी अभी 100 रुपया किलो हो जाएगा, तो आदत डालनी पड़ेगी तो जब इस प्रकार से होता है शुरुआत शुरुआत को, तब हम क्या कहते हैं, हम किसी अच्छे भक्तों का या वरिष्ठ भक्तों का सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा सुनने के पश्चात उसको मानते हैं, चलो भाई उन्होंने बोला यार, इतना इतने दिन से बोल रहे हैं, 2-4 दिन नहीं खाते हैं कांदा लहसुन, प्रसाद ही खाते हैं, जैसे वो पीलिया का पेशेंट उसको कड़वी लगती है मिश्री, लेकिन फिर भी बोलता है भाई डॉक्टर ने बोला है ना, अब 2-4 बार जबरदस्ती खा, शुरुआती शुरुआती यही होता है, नहीं लगता है अच्छा हमको नहीं चाहिए, जो हायर टेस्ट है वो नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती हायर टेस्ट। परंतु फिर भी कभी कभी बड़े विद्वान लोग बोलते हैं, अच्छे लोग विद्वान लोग बोलते हैं, तो हम सोचते हैं ठीक है ना एक हाथ दो बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम। जब हम ऐसे एक दो बार ट्रायल करते हैं तो अपने आप वो टेस्ट आ जाती है, और जब वो टेस्ट आ जाती है तो बाकी सारी टेस्ट खत्म हो जाती है। क्योंकि रियल टेस्ट जो है, रियल स्वाद हमको आ गया, जो सच्चा स्वाद है जो हमको ठीक कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। फिर एक शब्द आता है आगे का, सर्वशः। श्लोक क्या है? श्लोक है तस्मादस्य। हमने तस्माद का अर्थ देखा, तस्माद अर्थात इसलिए, अतः अर्थात निष्कर्ष। फिर हमने देखा महाबाहु, बहुत पराक्रमी, केवल शरीर से पराक्रम होने से काम, अर्जुन तो महापराक्रमी थे लेकिन फिर भी इस प्रकार से दशा हो गई। तीसरा शब्द हमने देखा निगृहितानि, निगृहितानि अर्थात विरक्ति। चौथा शब्द हम देख रहे हैं सर्वशः। सर्वशः का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या सभी प्रकार से या सभी जगह पे या सभी स्थान पे। क्या होता है सर्वशः का अर्थ? पूर्ण रूप से, सभी प्रकार से या सभी स्थान से, यह उसका अर्थ होता है। तो पूर्ण रूप से इंद्रिया विषयों से विरक्त है सर्वशः अर्थात पूर्ण रूप से इंद्रिया, पूर्ण रूप से, हाँ पूर्ण रूप से इंद्रिया विषयों से विरक्त है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से। शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं? शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। क्या कह रहे हैं? शून्यायतम अर्थात सर्वशत, पूर्ण रूप से इंद्रिय निग्रह, पूर्ण रूप से कह रहे शून्यायतम, हे गोविंद आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य लग रहा है, आपके विरह में शून्यायतम जगत सर्व, आपके विरह में सब जीरो लग रहा है, शून्य लग रहा है। क्लियर कह रहे चैतन्य महा, ये नहीं कह रहे हैं 10% जगत सर्वम, 20% 5% जगत सर्वम, ऐसा नहीं कह रहे। गोविंदम विरह, हे गोविंद आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत केवल 5% लग रहा है, ऐसे कहे हैं? क्या कहे हैं? हे गोविंद आपके विरह में संपूर्ण जगत मुझे क्या लग रहा है? शून्य लग रहा है। अर्थात इंद्रिय निग्रह कैसे सर्वशः अर्थात पूर्ण रूपे संपूर्णतः मेरा क्या है? इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं, पूर्णतः, और संपूर्ण आसक्ति भगवान, यदि वो भगवान नहीं है, यदि मुझे संपूर्ण जगत में भगवान नहीं दिखते अर्थात विरह हो जाता है, तो ये जगत कितना भी बड़ा होने दीजिए, कितना भी सुख वस्तु होने दीजिए, कितना भी आकर्षक होने दीजिए, मुझे तो वो जीरो के जैसा ही है, मेरे लिए वो जीरो है, शून्य है। यदि आपका अस्तित्व मुझे नहीं दिखता, परंतु कलयुग में मनुष्यों की जो विचार सरणी विचारधारा है वो क्या है? यदि मुझे ये जगत का आकर्षण नहीं दिखता है तो भगवान आप शून्य हैं। यदि मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, यदि मुझे सुख नहीं मिलता है, तो भगवान आप किस काम के? आप शून्य हैं। देखिए कितना विपरीत भाव है, भगवान शून्य है। और इसलिए प्रभुपाद महाराज क्या है, क्या है? प्रभुपाद महाराज का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। कैसे शून्यवादी? वो क्या बोलते हैं? भगवान आप जीरो है, यदि हमको कोई एंजॉयमेंट नहीं है तो आप जीरो है। जीरो को भगवान मानने वाले या भगवान को जीरो देखने वाले, ऐसे शून्यवाद प्रवृत्ति को नष्ट करने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए। तो ये शून्यवाद है। हमको क्या दिखना चाहिए? जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहे, शून्यायतम गोविंदम नहीं। हम देखते हैं हमारे संसार में अच्छा भला भक्ति कर रहे, एकादी कोई विपरीत बात हो गई, तुरंत दूसरे दिन, दूसरे ही दिन से क्या होता है? नवरात्रि का उपवास शुरू हो जाता है भयंकर तपस्या शुरू हो जाती है और अनेक व्रत शुरू हो जाते हैं, लगभग आठों दिन में छह दिन उपवास शुरू हो जाते हैं, कठिन तपस्या शुरू हो जाती है, और मान लो फिर भी कुछ भी नहीं मिला तो फिर वो भी छूट जाता है, और उसके पश्चात भी कुछ भी नहीं मिला फिर हम जादू टोना की ओर बढ़ते हैं। अब जादू टोना करके भी कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं। और नास्तिक बनने के बाद क्या होता है? मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया और राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया खाई लो विष, खाई नो विष, विष खा लिया। इसका अर्थ क्या है भाई? मनुष्य जन्म प्राप्त किया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, अर्थात जानबूझ के जहर खाया, ऐसी बात है। जानते हुए जानबूझकर जहर खा रहे, पॉइजन खा रहे, तो मरेंगे ही ना। नास्तिक बनने से कोई जीता है? मर जाता है, जीते जीते मरते रहता है, रोज मरता है। और मरता है तो कोई आसान बात है? मरने की वेदना, मृत्यु के समय की वेदना कोई साधारण वेदना है? कहते हैं 1000 बिच्छू काटते हैं इतना पेन होता है, इतना दर्द दुख होता है। तो यदि नास्तिक बन गया तो जीते जीते मरते रहता है, और ये मृत्यु जो है वो क्या है? इतना पेनफुल होता है, तो रोज इतना दुख है, रोज के जीवन में इतना दुख है, इतना भयानक दुख है। तो ये दुख को हम आलिंगन देते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? धीरे 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 अनेक नहीं, नास्तिक के बाद की स्टेज, क्योंकि नास्तिक होने से सुख तो नहीं मिलता ना, दुख तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कृष्ण न भजिया विष खाइया, विष खा लिया तो क्या सुख थोड़ी मिलेगा। तो ये विषयों विषय रूपी विष खाते रहते और सुख तो कभी मिलता नहीं, दुख बढ़ते जाता है, दुख बढ़ते जाता है। और दुख बढ़ते 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 अनेक प्रकार के व्यसन शुरू हो जाते हैं, है ना, व्यसनी हो जाता है। फिर बहुत सारे व्यसनों से भी सुख नहीं मिलता है, फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, मैडनेस, मूर्ख, पागल हो जाता है, लिटरली मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। तो हमको तो पागल नहीं बनना है, हमको तो अपनी बुद्धि स्थिर करना है, हमको बुद्धि स्थिर करना है। उनको बताइए कहाँ एड्रेस पूछ रहे हैं। तो हमको तो बुद्धि स्थिर करना है, पागल नहीं बनना है, और पागल यदि नहीं बनना है तो हमको हरे कृष्ण का जप करना है, कृष्ण कॉन्शियस होना है। कृष्ण कॉन्शियस होने से हम जहर नहीं खाएंगे, रोज क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद अर्थात कृपा, तो यहां जो भगवान कह रहे हैं सर्वशाह, वो सर्वशाह का अर्थ होता है कि पूर्ण रूपे, पांच दो चार टका भी नहीं, पूर्ण रूपे ना मैंने निग्रह कर लिया है। फिर दूसरा अर्थ सर्वशाह का होता है सभी प्रकार से, सभी प्रकार से, सभी प्रकार के प्रलोभनों को मैंने दूर कर दिया, सभी प्रकार के विषयों को, अर्थात सभी प्रकार के उसको क्या कहते हैं, आकर्षणों को बोलिए, या सभी प्रकार के जाल को मैंने दूर कर दिया है। मान लो विष सोने के थाली में या सोने के कटोरे में विष दिया हमको लाके, अरे सोने का कटोरा है, विष पीजिए बहुत अच्छा है, सोने का कटोरा, तो सोने के कटोरे में लाया इसलिए पिएंगे, ये संसार में बहुत चमक धमक है, अभी इस्कॉन में क्या है, मंदिर है, आरती है, कभी कभार जन्माष्टमी के दिन लाइट लगता है, हो गया, बाकी संसार में इधर आके देखो, पहल तीर उस तीर पे आके देखो जरा कितना चमक धमक है, कितना जोरदार थ्री डायमेंशन वाला सिनेमा थिएटर है, नीचे क्लब हाउस है, कितना आकर्षण है। तो ये जो विषय है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर रूप लेके आ जाते हैं, बहुत सुंदर सोने का रूप, गोल्डन सोने का रूप लेके आ जाते हैं, लेकिन विष तो विष ही है ना, जहर तो जहर है, जहर का ही काम करेगा, चाहे सोने के कटोरे में खाए या पत्ते के द्रोण में खाए। कोई व्यक्ति को बोलेगा मैं बहुत सादा सिंपल हूं, मुझे सिंपलिसिटी अच्छी लगती है, आई एम वेरी सिंपल, तो उसको यदि द्रोण पत्ते का होता है, पत्तल का, आम के पत्ते का द्रोण या केले के पत्ते का द्रोण बनाया, उसमें जहर दिया, तो क्योंकि सिंपल व्यक्ति है, सिंपलिसिटी है, सिंपल तरीके से जहर दिया, भाई हमको बहुत बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े थिएटर्स और ये सब अच्छे नहीं, हम तो अपने घर में सिंपल सादे तरीके से अपने मित्रों को इधर ही बुलाते हैं, पार्टी करते हैं सिंपल तरीके से। जहर है, कैसे भी खाइए जहर का ही असर करेगा, सिंपल तरीके से खाइए कि भाई में जाके अच्छे से खाइए, कैसे भी खाइए। इसलिए यह सर्वशाकार्थ रूप अर्थ है सभी प्रकार से, सभी प्रकार से विरक्ति, ये नहीं कि कोई ये फॉर्म में विरक्ति नहीं तो वो फॉर्म में चलेगा, जहर है वो जहर ही का काम, जहर का ही काम। बहुत लोग दूर 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 भ्रमण करने के लिए जाते हैं और सादा सिंपल तरीका है बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते, बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, खेत में बड़ा पेंडॉल डालते हैं, पाँच पाँच दस दस हजार लोग आते हैं और बड़ा प्रवचन भी रखते हैं, और प्रवचन में पूरे सांसारिक बातों का हुआ वो खूब रुलाते हैं और खूब हंसाते हैं, पहले तो खूब रुलाते हैं फिर खूब हंसाते हैं, और लोगों को बहुत अच्छा हुआ, और फिर क्या खाते हैं, रोटी और सब्जी, बस ज्वार की रोटी और सब्जी, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, साधा सिंपल बहुत, लेकिन क्या खाया, जहां राधा कृष्ण न भजिया, राधा कृष्ण भगवान का भजन जहां नहीं है वहां क्या है, वहां जहर है। कितना भी खेत में और कितना भी सादे तरीके से कीजिए प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम कीजिए, उसमें भगवान नहीं है वो जहर खाने वाली बात। तो सभी प्रकार से दूसरा अर्थ होता है, और तीसरा प्रकार होता है सभी स्थानों से, कोई इंद्रिय तृप्ति करना है तो कोई व्यक्ति सोचते हैं नहीं अभी हम यहाँ नहीं, सामने मंदिर है इधर नहीं कहीं अरे उधर वो डिवोटी का घर है उसके सामने वो गाड़ी उधर नहीं खाने का बाहर निकल गया तो यहाँ नहीं, ये स्थान पे नहीं वो स्थान। कोई कुछ होते इंडिया में इतना एंजॉयमेंट नहीं, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, ये स्थान पे इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, उस स्थान पे जाके विषयों का खूब भोग करेंगे, ये स्थान ठीक नहीं। परंतु यहां पे भगवान सर्वशा इसलिए कह रहे कि स्थान हो, प्रकार हो या कुछ भी, रूप हो या कोई प्रकार हो या स्थान हो, किसी भी प्रकार से सर्वशः विरक्त, अर्थात किसी भी प्रलोभन में मत फंसी। जो भयंकर, इसके पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, जो सबसे भयंकर वस्तु होती है, बड़ी डेंजरस खराब वस्तु होती है, उसका जो रैपर होता है, कवर, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर होता है, और उसको खोल के देखो तो अंदर जब खोलेंगे तो पता चलेगा चीटिंग, चीट कर दिया। इसलिए रैपर जो होता है बहुत खराब होता है, बहुत सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखता है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल, अंदर क्या होती है, चीटिंग होती है। इसलिए रैपर के जो कवर है उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए, वो हमको फंसा देती है। और सभी स्थानों में इसमें बहुत ही विशेष कर ये देखना चाहिए, कृष्ण भक्त जो होते हैं वो ये सब जानते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक मुख्य बात जानते हैं, कौन सी, संपूर्ण जगत जो है माया का स्थान है, संपूर्ण जगत माया का स्थान, ये जानता है, संपूर्ण जगत में गुणों का प्रभाव है, ये वो जानता है। इसलिए वो जहां जाता है, अमेरिका में जाए, स्विट्जरलैंड में जाए, हॉलीवुड में जाए, बॉलीवुड में जाए, या कहीं पे भी जाए, वो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। कहीं पे भी जाए, कोई भी स्थान पे जाए, कोई भी विषय के संपर्क में आए, कोई भी वस्तु उसको प्राप्त हुए, सोना भी प्राप्त हुए, या बहुत ही अच्छी आकर्षक वस्तु उसको प्राप्त हुए, लेकिन वो एक बात जानता है, क्या, कि कृष्ण भक्ति में लगे रहना है। कृष्ण भक्ति में लगे रहता है, नित्य भगवान के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का अंतिम पंक्ति है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्या है ये शब्द, कभी पहचान का लग रहा है, कुछ लग रहा है ऐसे परिचित, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर है, जो ये सब करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 57, 58 ये जो है, जो चर्चा हम कर रहे हो, किसकी चर्चा कर रहे, ये गाने की चर्चा कर रहे, ये गाना है भगवत गीता, गीता अर्थात गीत, एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग, सुपरहिट सॉन्ग, ये गाना है। गाना, कोई भी गाना होता है तो उसमें एक ही पद बार बार आता है, ऐसा होता है ना, एक ही पद बार बार आता है, ऐसे ही ये पद बहुत बार आया है, आप देख सकते हैं 57, 58, 61, 68 कंफर्म कीजिए अंदाज से, 57, 58 में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 58, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता गाना है 61 फिर तस्य प्रत, इससे ये प्रूव होता है कि ये गाना है क्योंकि गाने में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नाम ही उसका भगवत गीता है, तो गीत है, इसमें इमोशंस है, इसमें भाव है। जब कोई गाता है ना तो उसमें भाव होता है, सीधी सीधी बात करे तो उसमें कोई, उसमें जो ड्राइनेस होता है, सूखा सूखा लगता है, सीधे सीधे बात करो सूखा सूखा लगता है, थोड़ा सा गाने में बोलो, थोड़ा प्रशंसा के शब्द होते हैं, थोड़ा निंदा के शब्द होते हैं, थोड़ी खामियों की चर्चा होती है, थोड़े अच्छी बातों की चर्चा होती है, पॉजिटिव्स निगेटिव्स, लेकिन कुछ भी चर्चा होती है परंतु वो गाने में होती है तो अरे वाह वाह। कितना भी सैड सॉन्ग होने दीजिए, बहुत भयंकर सैड सॉन्ग, सुनते तो बोलते अरे वाह वाह, अरे सैड सॉन्ग को भी वाह वाह बोलते क्योंकि सॉन्ग वो गाना जो होता है ना उस वो हमारे मन को थोड़ी देर के लिए खींचता है, अटेंटिव बनाता है। तो ये भी एक गाना है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह इस प्रकार से चार बार ये शब्द आया है, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसकी बुद्धि स्थिर है वही निर्णय कर सकता है, है कि नहीं? जिसकी बुद्धि स्थिर है वही निर्णय कर सकता है। 5 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए बस जिसकी बुद्धि स्थिर है वही निर्णय ले सकता है। बुद्धि स्थिर कब होगी? जब मन इंद्रिय विषयों में नहीं लगेगा, अर्थात मन इंद्रिय विषयों में लगने से अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, दुर्बल हो जाता है। तो मन इंद्रियों में लगने से दुर्बल और अशांत हो जाता है, इसलिए बुद्धि स्थिर नहीं होती, और बुद्धि स्थिर नहीं होती इसलिए निर्णय नहीं है, बराबर है, निर्णय गलत हो जाते हैं। परंतु मन यदि स्थिर है तो बुद्धि स्थिर है, और बुद्धि स्थिर है तो सही निर्णय होगा, है कि नहीं? परंतु हम रोज के जीवन में देखते हैं मन को स्थिर करने के लिए हम निर्णय लेते हैं। बहुत अपसेट, सर दर्द हो रहा है, बहुत दिमाग खराब हो गया, अभी क्या है एक कप चाय पी लेता हूँ, निर्णय ले लिया, या क्या है थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश मन, थोड़ा मन अशांत है इसलिए निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? या तो टीवी देखता हो, या चाय पीता हो, या पड़ोसियों को मिलता हो, या कोई चिटचैट करता हो, थोड़ा प्रजल्प कर लेता हो, प्रजल्प तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, प्रजल्प कर लेता हूँ, इसकी उसकी बात है ना, कोई भी दूसरे की बात करो तो मन रम जाता है तो मन अशांत है इसलिए निर्णय लिया है ये सब करने का, तो निर्णय कैसा होगा? गलत होगा, रॉन्ग होगा। हम कई बार लोगों को बोलते हैं मन अशांत है ना, फिर भी आप जप की जा रहे, होता ही नहीं, मन बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाता है, देखा है मैंने बहुत लोगों को इसके। परंतु अशांत मन से निर्णय नहीं लिए जा सकता, लेकिन लेते हैं इसलिए निर्णय गलत हो जाता है, इसलिए दुख मिलता है। शांत मन से निर्णय लेना चाहिए, मन को शांत करके, मान लो निर्णय लेने की स्थिति है लेकिन आपको लग रहा है मन बहुत अशांत है, निर्णय मत लीजिए, डोंट टेक एनी डिसीजन, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, बस नाम लीजिए, ऐसे भले ही माला हाथ में मत लो, ऐसे ही बैठे बैठे कृष्ण को स्मरण करो बस। तो यहां क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहा है, यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधसः, यज्ञे संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यजन्ते ही सुमेधसः, अर्थात कलयुग में जिनकी बुद्धि स्थिर होगी वो क्या करेंगे? वही भगवान का नाम लेंगे। देखिए श्रीमद् भागवतम में ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए, यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधसः, ये संकीर्तन करने वाले अर्थात जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वही क्या करेंगे, वे लोग ही भगवान के संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करना है, आपको लगता है कभी कभी पूजा करना है, तो पूजा कैसे करना है? संकीर्तन का, संकीर्तन यज्ञ, मन में बहुत भाव उत्पन्न होगा, पूजा करना है, पूजा सब लोग करते हैं मुझे भी करना है। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक, अपने घर में बहुत बड़े बड़े बोल टाइप में लिख के रख दीजिए, क्योंकि मन कभी कभी सात्विक भाव में आता है तो बोलता है सारे संसार में गरबा हो रहा है, दुर्गा देवी की पूजा हो रही है, अष्टमी के दिन यज्ञ हो रहा है, रोज क्या क्या उपास तपास सब चल रहा है, तुरंत ये श्लोक पढ़िए, ग्यारहवा स्कंद पांचवा अध्याय बत्तीसवा इकतीस बत्तीसवा श्लोक 11:5:32 उसमें लिखा है। कलयुग में, फिर बताता हूं, कलयुग में जिनकी बुद्धि स्थिर होगी, कलयुग में जिनकी बुद्धि स्थिर होगी वे लोग भगवान की पूजा उनके संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, अर्थात जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे उनकी बुद्धि कलयुग में स्थिर हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। सिंपल बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अर्थात इस संकीर्तन आंदोलन, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, इसमें भाग लेने से सारे लोग बुद्धिमान हो सकते हैं। और जो भाग ले रहे हैं, लिए हुए हैं, वो कौन है? वो बुद्धिमान है। और हमको भी बुद्धिमान बनना ही चाहिए, हम सब तो है ही। आप सब श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं, तो हमारी बुद्धि कैसी है? स्थिर। हमारा प्रयास चल रहा है। जब हम प्रयास करते हैं तो कभी कभी गलतियां होती है, परंतु तुरंत हायर अथॉरिटी को पूछना चाहिए कि जरा गलती हो रही है, ये आंदोलन में भाग लेने में कुछ कुछ मिस्टेक हो रही है, जरा थोड़ा तुरंत हायर अथॉरिटी करेक्ट कर देती है ना, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। तो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने वाले बुद्धिमान होते हैं, ये इस श्लोक का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई एक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं श्लोक से संबंधित, पूछिए। कोई भी चीज अच्छी लगती है इसका मतलब लगाम नहीं है। कोई भी चीज, टीवी देखा बहुत अच्छी सीरियल है, एडवर्टाइज देखी बहुत अच्छी एड है, बाहर गए कोई बहुत अच्छा है मॉल वगैरह दिखा, अरे ये बहुत अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए, और फिर उसके बाद होता है मुझे चाहिए, अच्छी लगती है, और फिर जो दूसरा भाव उत्पन्न तुरंत हो जाता है, सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत दूसरा मुझे चाहिए। हाँ मुझे, पहले प्रश्न का उत्तर मिला, अभी दूसरा मुझे। बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी लगा हुआ है संसार में, तो अभी भगवान में कैसे लगाएंगे? तो हमको संसार के खेच के भगवान में नहीं लगाना है, उसको संसार में ही लगे रहना है, केवल उस मन को भगवान को ऐड करना है, वो मन को संसार से मत खींचिए, उसको लगे रहने दीजिए, जो कर रहा है ठीक है, अच्छी बात है, संस्कार है इतने सालों से हम सब पे है, हमको क्या करना चाहिए? वो भगवान को खींच के उसमें डालिए, मन को खींच के भगवान में मत लगाइए, भगवान को खींच के मन में डालिए। और भगवान दयालु है, यदि कोई उनको खींचता है तो भागते भागते आ जाते, देर नहीं करते हैं, द्रौपदी के लिए भी भागते भागते आए, सभी के लिए आ जाते। तो इसलिए भगवान को खींच के अपने संसार में लाइए उनको, हमको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण।